प्रस्तावना पेज 7। 13वीं शताब्दी के आरंभ में जब दिल्ली का राज सिंहासन गुलाम वंश के सुल्तानों के अधीन हो रहा था, अमीर सैफुद्दीन महमूद नामक एक सरदार बलख हजारा से मुगलों के अत्याचार के कारण भागकर भारत आया और एटा के पटियाली नामक ग्राम में गंगा जी के किनारे रहने लगा। सौभाग्य से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के दरबार में उसकी पहुँच जल्दी हो गई और अपने गुणों के कारण वह उसका एक सरदार बन गया। भारत में उसने नवाब एमा दुलमुख की पुत्री से विवाह किया, जिससे प्रथम पुत्र एजुद्दीन अली शाह, द्वितीय पुत्र हुशामुद्दीन अहमद और सन 653 हिजरी अर्थात सन 1255 ईस्वी में पटियाली ग्राम में तीसरा पुत्र अमीर खुसरो का जन्म हुआ। इनके पिता ने इनका नाम अबुल हसन रखा था, पर इनका उपनाम खुसरो इतना प्रसिद्ध हुआ कि असली नाम लुप्त प्राय हो गया और वे अमीर खुसरो कहे जाने लगे। 4 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता के साथ दिल्ली गए और 8 वर्ष की अवस्था तक अपने पिता और भाइयों से शिक्षा प्राप्त करते रहे। सन 1264 ईस्वी में इनके पिता 85 वर्ष की अवस्था में किसी लड़ाई में मारे गए। तब इनकी शिक्षा का भार इनके नाना नवाब एमा दुलमुख ने अपने ऊपर ले लिया। कहते हैं कि उनकी अवस्था उस समय 113 वर्ष की थी। नाना ने थोड़े ही दिनों में इन्हें ऐसा शिक्षा दी कि ये कई विधाओं से विभूषित हो गए। खुसरो अपनी पुस्तक तुहुब तुसग्र की भूमिका में लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं 12 वर्ष की अवस्था में शेर और रुबाई कहने लगा, जिसे सुनकर विद्वान आश्चर्य करते थे और उनके आश्चर्य से मेरा उत्साह बढ़ता था। उस समय तक मुझे कोई काव्य गुरु नहीं मिला था जो कविता की उचित शिक्षा देकर मेरी लेखनी को बेचाल चलने से रोकता। मैं प्राचीन और नवीन कवियों के काव्यों का मनन करके उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करता था। ख्वाजा शमसुद्दीन दरबर ख्वाज रिज्मी इनके काव्य गुरु इस कारण कहे जाते हैं पेज 8 कि इन्होंने इनके प्रसिद्ध ग्रंथ पंजगंज को शुद्ध किया था। खुसरो ने गर्रतूल कमाल तथा हस्तविहिस्त के अंत में इनकी प्रशंसा की है। इसी समय खुसरो का झुकाव धर्म की ओर बढ़ा और उस समय दिल्ली में निजामुद्दीन मुहम्मद बदायूनी सुल्तानुल्म शायख औलिया की बड़ी धूम थी। इससे ये उन्हीं के शिष्य हो गए। इनके शुद्ध व्यवहार और परिश्रम से इनके गुरु इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे और इन्हें तुर के अल्लाह के नाम से पुकारते थे। खुसरो ने पहले पहल सुल्तान गयासुद्दीन बबलन के बड़े पुत्र मुहम्मद सुल्तान की नौकरी की, जो मुल्तान का सूबेदार था। यह बहुत ही योग्य कविता का प्रेमी और उदार था और इसने एक संग्रह तैयार किया था जिसमें 20 सहस्त्र शेर थे। इसके यहाँ से अपने परम मित्र अमीर हसन के साथ बड़े आराम से 5 वर्ष तक रहे। जब सन 1284 ईस्वी में मुगलों ने पंजाब पर आक्रमण किया, तब शहजादे ने मुगलों को दीपालपुर के युद्ध में परास्त कर भगा दिया, पर युद्ध में वह स्वयं मारा गया। खुसरो जो युद्ध में साथ गए थे, मुगलों के हाथ पकड़े जाकर हिरात और बलख गए, जहाँ से 2 वर्ष के अनंतर उन्हें छुटकारा मिला। तब यह पटियाली लौट आए और अपनी माता तथा संबंधियों से मिले। इसके उपरांत गयासुद्दीन बलबन के दरबार में जाकर इन्होंने शेर पढ़े जो मुहम्मद सुल्तान के शोक पर बनाए थे। बलबन पर इसका ऐसा असर पड़ा कि रोने से उसे ज्वर चढ़ा आया और तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के अनंतर खुसरो अमीर अली मीर जामदार के साथ रहने लगे। इसके लिए उन्होंने अस्पनामा लिखा था और जब वह अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ तब वे भी वहाँ 2 वर्ष तक रहे। सन 1288 ईस्वी में ये दिल्ली लौटे और कैकुबाद के दरबार में बुलाए गए। उसके आज्ञानुसार सन 1189 ईस्वी में किरानुक्सादैन नामक काव्य कोष्ठक में मसनबी इन्होंने 6 महीने में तैयार किया। सन 1290 ईस्वी में कैकुबाद के मारे जाने पर गुलाम वंश का अंत हो गया और 70 वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। इसने खुसरो की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अमीर की पदवी देकर 1200 तन का वेतन कर दिया तथा इन्हें अपना मुसहिफदार कोष्ठक में शाही धर्म पुस्तक का रक्षक और दरबारी नियुक्त किया। पेज 9। जलालुद्दीन ने कई बार निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने की इच्छा प्रकट की पर उन्होंने नहीं माना। तब इसने खुसरो से कहा कि इस बार बिना आज्ञा लिए हुए हम उनसे जाकर भेंट करेंगे, तुम उनसे कुछ मत कहना, ये बड़े असमंजस में पड़े कि यदि उनसे जाकर कह दें तो प्राण का भय था और नहीं कहते तो वे हमारे धर्म गुरु है। उनके क्रोधित होने से धर्म नाश होता है। अंत में जाकर उन्होंने सब वृत्तांत तो उनसे कह दिया, जिसे सुनकर वे अपने पीर फरीदुद्दीन शंकरगंज के यहाँ अजोधन अर्थात पाटन चले गए। सुल्तान ने यह समाचार सुनकर इन पर शंका की और इन्हें बुलाकर पूछा। इस पर उन्होंने सत्य सत्य बात कह दी। इसके लिए उन्होंने एक पद्यमय ग्रंथ मेफ्ताहुल फतहु प्रस्तुत किया था। सन 1296 ईस्वी में अपने चाचा को मारकर अलाउद्दीन सुल्तान हुआ और उसने उन्हें खुसरूए शायरा की पदवी दी और इनका वेतन 1 सहस्त्र तन का कर दिया। खुसरो ने इनके नाम पर कई पुस्तकें लिखी जिनमें एक इतिहास भी है जिसका नाम तारीख़े आलाई है। इनकी 5 मसनवियाँ सन 1297 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक 3 वर्षों में तैयार हुई। इसके उपरांत गद्य में खजाए नुतुल फतुह तथा एजाजे खुसरवी लिखा। सन 1397 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान हुआ। उसने खुसरो के कसीदे पर प्रसन्न होकर हाथी के तोल इतना सोना और रत्न पुरस्कार दिए। सन 1320 ईस्वी में उसके वजीर खुसरो खान ने उसे मार डाला और उसके साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। पंजाब से आकर गाजी खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से वह गद्दी पर बैठा। खुसरो ने इसके नाम पर अंतिम पुस्तक तुगलक नामा गियासी लिखा था। इसी के साथ ये बंगाल गए और लखनौती में ठहर गए। सन 1324 ईस्वी में जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार मिला तब वे वहाँ से झट चल दिए। कहा जाता है कि जब ये उनकी कब्र के पास पहुँचे तब यह दोहा पढ़कर बेहोश हो गिर पड़े। पेज 10। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुतेस। इनके पास जो कुछ था सब इन्होंने लुटा दिया और वे स्वयं उनके मजार पर जा बैठे। अंत में कुछ दिनों में उसी वर्ष 18 सव्वाल सन 725 हिजरी बुधवार इनकी मृत्यु हो गई। ये अपने गुरु के कब्र के नीचे की ओर पास ही गाड़े गए। सन 1605 ईस्वी में ताहिर बेरा नामक अमीर ने वहाँ पर मकबरा बनवा दिया। खुसरो ने अपने आँखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान और पतन तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा। इनके समय में दिल्ली के तख्त पर 11 सुल्तान बैठे जिसमें सात की उन्होंने सेवा की। ये बड़े प्रसन्नचित, मिलनसार और उदार थे। सुल्तानों और सरदारों से जो कुछ धन आदि मिलता था वे उसे बांट देते थे। सल्तनत के अमीर होने पर और कभी सम्राट की पदवी मिलने पर भी ये अमीर और दरिद्र सभी से बराबर मिलते थे। इनमें और मुसलमानों की तरह धार्मिक कट्टरपन नाम को भी नहीं था। इनके ग्रंथों से जाना जाता है कि इनके एक पुत्री और तीन पुत्र थे जिनका नाम गियासुद्दीन अहमद, एनुद्दीन अहमद और यमीनुद्दीन मुबारक था। इन लोगों के बारे में और कुछ वृत्तांत किसी में नहीं मिलता। बदायूनु कृत मुंता खिबुत वारिक भाग एक पृष्ठ 255 से 256 पर लिखा है कि खुसरो का पुत्र मलिक अहमद सुल्तान फिरोज शाह के समय का एक कवि तथा दरबारी था। यह काव्य मर्मज्ञ था और इसकी कविता बहुत कम मिलती है। मनुष्य के साथ ही उसका नाम भी संसार से उठ जाता है, पर उन कार्यकुशल व्यक्तियों और कवि समाज का जीवन और मृत्यु भी आश्चर्यजनक है कि जो मर जाने पर भी जीवित कहलाते हैं और उनका नाम सर्वदा के लिए अमिट और अमर हो जाता है। इनका कार्य और रचना ही अमृत है जो उन्हें अमर बना देता है, नहीं तो अमृत कल्पना मात्र है। इन्हें में अमीर खुसरो भी हैं कि जिनके शरीर को इस संसार से गए हुए आज 700 वर्ष हो गए पर वे अब भी जीवित हैं और बोलते चालते हैं। उनके मुख से जो कुछ निकल गया वह संसार को भाया। इनके गीत, पहेलियाँ आदि 7 शताब्दी बीतने पर भी आज तक उसी प्रकार प्रचलित हैं।